ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அன்யதா கர்த்தும் சக்தி, ஐசே கர்த்தும் சக்திசாலி ஏகமாத்ர விஸ்வேஷ் ஹை. மன விஸ்வேஷ் கா அர்த்தம் மேனே பதாயா, விஸ்வ கா ஜோ ஈஷ ஹை வோ கோன் ஹை, தோ ஏகமாத்ர பரமாத்மா ஹை, ஜிஸ்கி கர்த்தும் அகர்த்தும் அன்யதா கர்த்தும் சக்தி ஹை. உஸ்கே சரணோ மே கைசா சரண ஹை, சரண கமல் நௌகா, தீர்க நௌகா ஹை போல். அப்ப தீர்க தீர்க போலனே பர் யே ஹோதா ஹை கி சர்வத்ர பேட்டி அப்னா சர்வத்ர பகவான் சரண கமல் கி நௌகா வித்யமான் ஹை. தீர்க போல் தி ஜெய்சே யா சமுத்திர மே நௌகா ரத்தி ஹை, லேக்கின் யா பகவான் கி நௌகா கித்னி லம்பி ஹை, தீர்க விசேஷண தே தியா. தோ கித்னி லம்பி ஹை, தோ பலி கே தர்பார் மே பகவான் கயே ஹுவே தே. போல்தே கி ஹமே தோ இத்னே மே சந்துஷ்ட ஹோதா ஹூம், ஜாதா மை மாங்தா நீ. அரே போல ஜித்னே சோட்டே உத்னே தும்ஹாரி மாங்கனே கி புத்தி பி கே ஹை, சோட்டி ஹை. ஓர் போல்தே கி சாடே தீன் ஹாத் கா சிர் ரஹே, தோ சாடே தீன் ஹாத் கே லியே ஜகா பி கித்னி சாஹியே, தீன் டக காஃபி ஹோதி ஹை, இஸ்லியே முஜே இத்னி ஹி சாஹியே. தோ ஏக் ஹி பைர் மே பூரா ஏ தரா மண்டல் ஏக் ஹி பைர் மே நாப் லியா, தூசரா பைர் ஓர் தீசரே பைர் கோ ஜகா ஹி மிலி நீ. தோ கஹீ பி ஹம் பேட்டே ஹுவே ஹை தோ உஸ்கே அனுசார் கஹா பேட்டே ஹை, பகவான் கே சரண கமல நௌகா மே ஹி பேட்டே. தோ இத்னி லம்பி பகவான் கி சரண கமல் நௌகா ஹை, ஹம் ஜஹாம் பி பேட்டே ஹுவே ஹை வஹாம் பர் பகவான் கி சரண கமல நௌகா ஹி ஹை. சரண கமல் நௌகா தோ ஹை, லேக்கின் ஹமே பேட்னே கே லியே ஆயா நஹீ. கங்கா ஜி மே ஆப் லோக் காசி மே தேகே ஹோங்கே, பேட்டாதே சமய பேலன்ஸ் பனா கே பேட்டா தேதே, கடே ஹோனே தேதே நஹீ, சமான் பேட்டாதே, உதர் பி இதர் பி வஜன் ஜாதா நா ஹோ, தோடா பி பேலன்ஸ் பிகட் ஜாய் தோ டுபனே கி பஹத் சங்கா ஹோ ஆசங்கா ரத்தி ஹை, இஸ்லியே பேலன்ஸ் பனா தேதே ஹை. மை எக் உதாரண தேனே கே ஜா ரஹா தா, லேக்கின் தூசரா எக் ஹை வோ பேலன்ஸ் பன் சலியே தேக்தே ஹை. ஹா டீக் ஹை, கோய் ஹர்ஜா நீ பேலன்ஸ் தோ இசி. அபி வோ பேட்டானே கா தரிகா ஹை நா உஸ்கா, கைசா பி பேட்னே தேதா நஹீ ஹை, மனே கைசா பி யதி பேட்னே வாலே கோ பேட்னே தியா ஜாய தோ உஸ்கோ பார் கர்னா முஷ்கில் ஹை. தோ மனே பேட்னே கி பி யே கலா ஹை, ஔர் உஸ் கலா சே பேட்னே கே பாத் மே ஹி உஸ்கி நௌகா ஹமே பார் கரா தேதி ஹை. இசி பிரகார் பகவான் கி சரண கமல் ரூபி நௌகா பி இத்னி லம்பி ஹை, சப் தரப் வித்யமான ஹை, லேக்கின் உஸ்மே பேட்னே கி ஹமாரி கலா நஹீ ஹை. தோ ஹம் லோக் இஸ்கா மத்லப் ஹை கி ஹம் லோக் பேட்டே நஹீ ஹை, சல் ரஹே. ஏக் சுந்தர் உதாரண தேதே ஹை, ஏக் ஹிரண் கி டோலி ஹை ஜங்கல் மே, பஹத் படி டோலி, உஸ்கா ஏக் நாயக் ஹை, பானி தோ பீனா படதா ஹை, பானி பீனே கே லியே ஏக் தலாவ் மே ஜாதே தே, தலாவ் மே ஏக் மகர்மச்ச தா, வோ மகர்மச்ச கிசி கோ பானி பீனே தேதா நஹீ தா, உஸ்கி பி ஷர்த் தி, ஜெய்சே பகாசுர் கி ஏக் ஷர்த் தி, இசி பிரகார் உஸ்கி பி ஏக் ஷர்த் ஹை கி ஹர் ரோஜ் முஜே ஏக் கானே கே லியே மிலேகா தபி மை பானி பீனே தூங்கா. தோ ஹர் ரோஜ் ஏக் 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 மிருக ஜோ ஹை கம் ஹோதா ஹை, பஹத் படி டோலி தி, அச்சானக் ஏக் தின் தூசரே டோலி கா நாயக் பி வஹா கும்தா கும்தா ஆ கயா, और इनकी संख्या देखी, अरे इतनी संख्या कैसी कम हो गई, तो उन्होंने सब बताया ऐसी ऐसी बात है भाई, हर रोज एक एक देना पड़ता है। अरे बोलते कितने अज्ञानी हो तुम लोग, बोलते हैं कि बिना एक भी दिए पानी पीने की कला तुम्हें नहीं आ गई। बोले कैसी कला हो सकती है, बोले कि आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं पूर्व के ओर खड़ा रहता हूं दूर, और आप लोग आधे आधे बैठ जाए बांटिएगा, और उत्तर दक्षिण की ओर खड़े रहेगा। वो किधर है पहला देख मैं देखते रहूंगा और लोगों को आदेश देता रहूंगा, वैसा करिएगा। अब एक किनारे में वो हर रोज जहां आते थे मृग पानी पीने के लिए, वो वहां विद्यमान ही था उत्तर दिशा की ओर, और आधे आधे उन्होंने किया था कि दक्षिण को और बोले कि चलो पानी पी लो। तो उन्होंने सोचा कि आज इधर नहीं आए हैं, तो तालाब में से मगरमच्छ उधर दौड़ने लगा, तो उधर दौड़ने लगा आधे में आया तो उनको कहा पीछे हट जाओ और इनको बोलो पानी पी लो। अब उस किनारे जाने तो वो तो उधर गए, इधर देखा तो इधर आ रहे थे, जब तक बीच में आ रहा था तब तक वो भी पानी पी के मस्त हो गए। और ये हर रोज यही नियम करना, एक भी देने की जरूरत नहीं है। और तालाब से बाहर आकर वो दौड़ नहीं सकता, मगरमच्छ की शक्ति जल में ही ज्यादा रहती है, और बाहर वो तेज जा भी नहीं सकता है और पकड़ भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार वे लोग करने लगे। तो इसका मतलब हम लोग भी, अभी उन्होंने क्या किया, ये तालाब का पानी पीना है उनको, ये तालाब ही एक प्रकार का संसार है और इसके दो किनारे हैं, और संसार में हम लोगों को रहना ही है, मतलब संसार के खाद्य पदार्थ विषय आंखों से देखना ही है, कानों से सुनना ही है, पैरों से चलना ही है, सभी इंद्रियों की अपनी अपनी क्रियाओं को तो करना ही होता है। तो करते वक्त क्या करना है ये उन्होंने बताया, जब अहंकार रूपी मगरमच्छ तुम्हारी तरफ आ जाता है तो तुम पीछे हट जाना। ये मगरमच्छ ये संसार है तलाव, और संसार के विषय उपभोग किए बिना शरीर रह नहीं सकता है। इसको सेवन करने पर मरे नहीं, तो मरना किससे होता है, अहंकार से होता है। तो ये अहंकार को अपने तरफ आते हैं तो आप लोग पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ये दो किनारे हैं ये तालाब के, एक का नाम है अहंता और एक का नाम है ममता। जब तक ये अहंकार रूपी मगर ममता के किनारे आते हैं तो दूर आ जाए, ममता के किनारे पर रहेगा तभी तो मगरमच्छ खाएगा, तो जल वो किनारे पर तालाब के रहेगा उसी को खींच लेगा, तो किनारे से दूर हट जाने के बाद में मगरमच्छ ले नहीं सकता। इसी प्रकार अहंकार रूपी मगरमच्छ ये ममता रूपी किनारे से दूर हट जाए, और इधर अहंता रूपी किनारा है तो इधर आता है तो अहंता रूपी किनारे से भी हट जाए। तो ये दो किनारे से ही हमारा जीवन चल रहा है, तो एक तरफ अहंता और एक तरफ ममता, अहंता ममता से हमारा चलना हो रहा है, दो पैर से चलते हम लोग। तो दो पैर कौन है, एक अहंता का और दूसरा ममता का। जैसे नौका में बैठते हैं तो दोनों पैरों की क्रियाएं शांत हो जाती है, हलचल बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में से अहंता और ममता छोड़ दे तो उसी क्षण हम लोग कहां बैठेंगे, भगवान की चरण कमल रूपी दीर्घ नौका में, माने सर्वत्र भगवान की दीर्घ नौका है, इतनी लंबी नौका है, लेकिन उस नौका में बैठने के लिए हमारे जो पैर शांति नहीं है, चल रहे हैं हम लोग तो बैठे नहीं है। अब हम लोग यहां बैठे हैं लेकिन मन में अहंता ममता कहीं छुट्टी है क्या, ये अहंता ममता छोड़ दे तो इसी का नाम है कि बैठना, माने बैठने की क्रिया का वहां अर्थ कर दे। ऐसा यदि बैठ जाता है तो ये भगवान की चरण कमल रूपी दरगाह दीर्घ नौका हमें पार करा देती है। तो बैठने के लिए अब यही शरीर आदि है, सुंदर वर्णन करते रहते हैं। ऐसे शरीर मिलने के बाद में तो बैठने के लिए सीखना चाहिए, अहंता ममता रूपी जो चलना हो रहा है ये चलना छोड़ देना चाहिए। और वह छोड़ने के लिए ही या मुंबई वालों के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सबसे अच्छी जगह, ऐसी जगह भारत में तो है ही नहीं है, तो विश्व में कहां से आएगी? भारत में नहीं है तो विश्व में रहेगी क्या? इतनी सुंदर, इतनी बड़ी प्रवृत्तियां, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां कहीं चलती नहीं है। थोड़ा सा विचार करके देखें, छोटा सा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में क्या होते हैं? अनेक विषय होते हैं, अनेक विषय होते हैं अलग अलग। इसी प्रकार यहां सब विषय है, मतलब डॉक्टर से लेकर योगी तक अध्यात्म सब विषय यहां उपलब्ध है। तो ऐसी जगह को प्राप्त करके हम लोगों को भी एक बैठने की कला सीखनी चाहिए। अब बार बार उपदेश देते रहते हैं संत महापुरुष लोग, भर्तृहरि जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में भी। ये शरीर का नाम है कर्म भूमि, और कर्म भूमि को प्राप्त करने के बाद में उस भूमि में कौन से बीज बोना चाहिए? सुंदर बीज बोना चाहिए। किसके? भगवान के बीज। कबीरदास जी का बेटा कमाल और कबीरदास जी कितने सुंदर सुंदर उनके पद हैं। कबीरदास जी बोलते हैं, मनवा खेती करो हरि नाम के। सुनिए ना भजन, कितना सुंदर भजन। मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की, पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, न लागे कवड़ी दमड़ी, मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की। मन के बैल चौदिशी भटके, मन के बैल चौदिशी भटके, रसी लगा गुरु ज्ञान की, मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की। कहत कबीरा सुन भय साधो, कहत कबीरा सुन भय साधो, भक्ति करो हरिहार की, मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की। ये शरीर खेती तो है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और क्षेत्र में इस खेती में कौन सी फसल उगाना चाहिए? हरिनाम की। बाकी तो बिना बोए बीज बोते रहते, देखिए अपना उगते रहते हैं। किसान को किसकी परेशानी होती है पता है? बीज बोने पर बीज के जो अंकुर आते हैं उसकी उनको बड़ी चिंता नहीं रहती है, चिंता रहती है बिना बोए बीजों की जो घास पतवार होता, खरपतवार, उस घास का बीज बोया नहीं रहता है। अनेक प्रकार के पेड़ उगते रहते हैं और खाद पानी सब वही खाते हैं। जो बीज बोया है वो तो इतना इतना रहने से पहले ही दूसरा हरा भरा हो जाता है, तो किसान को किससे तकलीफ होती है? जो बीज बोया हुआ है उससे परेशानी है क्या? जिसको बोया नहीं उससे? तो इसी प्रकार ये संसार बोया, बिना बोया खरपतवार की तरह आता है, इसलिए इसको करने की जरूरत है क्या? ये संसार सब चलता है, इसको चलाने की जरूरत नहीं, ये खरपतवार की तरह बिना बीज बोए आ जाता है। इसलिए संत बार बार बोलते हैं कि केवल बोने पर वो आने वाला फल कौन सा है सुंदर? ये हरि नाम के। दूसरा संसार तो उसको बोने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना बोले बिना किए सब होता होता रहता है, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो संस्कार है, संस्कार से वो करेगा ही और उसके खाने के लिए मिलेगा ही। तो इस शरीर को कर्म भूमि बोलकर भर्तृहरि जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। साल्यं वैडुर्यमयं पचति तिलकणान् इंदनैः चंदनाद्येर् सौवर्ण लांगुलग्रैर विलकति वसुदाम् अर्कमूलस्य हेतु कृत्वा कर्पूर खंडान् वृत्तिमिय कुरुते को द्रवानां समन्तात् प्राप्य इमां कर्म भूमिं न चरति मनुजो यतो ही मंद भाग्य। स्थाल्याम वैडूर्यमय्याम पचति तिलकणान, एक एक वर्णन सुंदर देते। पहले जमाने में बड़े बड़े राजा लोग रहते थे, ये भारत सोने की चिड़िया थी। आज भी बड़े बड़े लोगों के घर में सोने के बर्तन हैं। ये बंगलोर की ये माल्यादि की क्या क्या इन लोगों को बोलते हैं कि चम्मच की, हर एक चम्मच सोने की है। एक बार आया था पेपर, हम कहीं पढ़ते नहीं, लेकिन अचानक मानी वैभव उनका सिंधिया, ग्वालियर की सिंधिया दी राजघराना के, आज भी बहुत बड़ा वैभव है उन लोगों का। ऐसे सोने के थाल पात्र हैं, हीरे जड़ित पात्र आदि हैं, बटलोई मान लीजिएगा एक कुकर की तरह आदि होती है। तो हीरे जड़ित वो पात्र है, उस पात्र में बनाने वाले पहले राजा लोग बढ़िया खीर आदि पकाते थे। राजा लोग चले गए, उनके बच्चे लोग रह गए। अब बच्चे ने सोचा कि हमें खाने के लिए तो लाले हैं, तो चलो इसमें खीर तो नहीं पका सकते हैं, तो सामान्य चना आदि भूजा जाए, सामान्य वस्तु पकाया जाए। बटलोई, हीरे जड़ित बटलोई पात्र है, चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसमें क्या पका रहे बोलते हैं, चने में सामान्य विषय भूज रहे। जलाने के लिए लकड़ी क्या लगा है, ईंधन ही चंदन आद्य, ईंधन लकड़ी लगे हैं, चंदन की लकड़ी लगाया है और अपना जल रहा है। बड़े घर की वो वस्तु थी, लेकिन उनको तो कोई मूल्य नहीं है बाद वाले। और दूसरा वर्णन करते हैं, एक राजा देश पहले राजा लोग सोने के हाल से यज्ञ भूमि जोतते थे। कल महाराज जी बता रहे थे भागवत में, वहां यज्ञ भूमि कैसी चल रही थी, अपना राजस्व याग के लिए, कैसी यज्ञ के लिए सोने का हाल जोता रहता है, जोतते वैद्य को अर्क के जड़ निकालने थे, अर्क क्या बोलते हैं उसको, अकड़े की जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, क्या नहीं पत्ते, अर्क बोलते हैं उसको, अकड़ा भी बोलते हैं, उसकी जड़ निकालने थी दवाई के लिए। वो बहुत दवाई काम करते, जड़ भी है उसके, छोटे छोटे जो फूल हैं वे बहुत काम करते हैं, उन लोगों को पता है। तो उन्होंने क्या किया, अकड़ों की उस जड़ निकालने के लिए सोने के हाल का प्रयोग किया। और सोने का हल किसके लिए होता है, हाँ यज्ञ की भूमि के लिए होता है, और उसका प्रयोग किया आकड़े की। और वो आकड़ा है क्या है, दूसरे की आंख फोड़ने, यदि किसी के आंख में उसका दूध गया तो आंख अंधी हो जाती है, तो उसका प्रयोग किया। एक किसान ने सुंदर कर्पूर के पेड़ लगाए थे, भीमसेन का कर्पूर दवाई में काम आता है, और बगल में ही सब्जी उगाई थी, पालक की सब्जी। उस पालक की सब्जी को पशु आकर खाते थे, उनकी रक्षा करनी थी, तो रक्षा करने के लिए बाड़ लगानी पड़ती है, कांटे की बाड़। अभी तो कटीली तार आई हुई है, तो पहले बबुल की, बेर के पेड़ काटते थे और बगल में लगा देते। इन्होंने कर्पूर के पेड़ काट दिए और पालक की सुरक्षा के लिए लगा दी। तो इसी प्रकार ये बोलते, प्राप्त इमाम कर्म भूमि न चरति मनोजो यतोई मंद भाग्य। अब यहां जो वर्णन दिया, बटलोई हीरे जड़ित बटलोई, स्थाल्याम वैडूर्यमय, वैडूर्य का अर्थ है अमूल्य रत्न, ये अमूल्य वैडूर्य वाली ये बनी हुई है थाली, एक एक अपना क्या बोलते हैं इंद्रिय हीरे रत्नों से कम है क्या? ज्यादा। तो इतने सुंदर ये वैडूर्यमय थाली है, बटलोई है, और इसमें क्या पकाना चाहिए? हा हरिनाम रूपी तस्मय पकाना चाहिए। ये न पकाते हुए अपना विषयों के चने पका रहे, और पकाने के लिए लकड़ी कौन सी लगा रहे, और यहां चंदन क्या है? चंदन की लकड़ी में अमूल्य लकड़ी, एक एक क्षण अमूल्य। ये हमारा जो समय है, ये समय क्या है? चंदन। और ऐसे अमूल्य चंदन रूपी समय जो है इसके लिए गमाते हैं, भरतहरि जी बोलते हैं। और दूसरा वर्णन कर दिया, बुद्धि इतनी सुंदर भगवान ने दिए हैं, और इस बुद्धि का प्रयोग जो परमात्मा को जानना है, अच्छे काम करना है, उसको जानने में ना लगाते हुए जो अकड़े को जानने में ही लगा दी, और ये संसारी अकड़ा है पुनरपि मरणम पुनरपि, इसे वो अकड़ा का दूध डालने पर अंधा हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार क्या कर देता है? बार बार जन्मना और बार बार मरना। तो बार बार जन्मना बार बार मरना ये संसार रूपी अकड़ा है, और इसी में हमारी सोने की बुद्धि का हल चला रहे। कृत्वा कर्पूर खंडान, कर्पूर के पेड़ काट दिए, और किसकी संरक्षा के लिए? पालक के। कर्पूर के पेड़ का अर्थ होता है कर्म इंद्री। जितने हमारे कर्म इंद्री, पहला तो ये ज्ञान इंद्री वैडूर्यमय है, ये जितने भी दिखाई दे रहे बाहर के ज्ञान इंद्री, ये हीरे रत्न है, और बुद्धि सोने का हल है, और हमारे हाथ वाणी पैर, ये कर्म इंद्री क्या है? कर्पूर के पेड़ को उपमा दे दी, ये कर्पूर के पेड़ है, इसको काट दिए, और किसकी सुरक्षा के लिए? पालक के। तो इसका अर्थ है कि इतने अमूल्य ये कर्म इंद्रिय हैं, इस कर्म इंद्रियों के द्वारा सुरक्षित क्या होना चाहिए? संसार नहीं बल्कि अमूल्य राम नाम की खेती की अपना सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए हाथ ताली बजाना, मुख से वर्णन करना। ऐसा आप लोग यहां सुबह सुबह आए तो किसके द्वारा गए? कर्मिंद्री के द्वारा ही तो आ गए, कर्मिंद्री के द्वारा यहां लगाए, मुझे सुरक्षा अपनी बढ़िया लगा, लेकिन केवल संसार के लिए टू इन वन, ये बहुत बढ़िया, एक तरफा जाता है वन वे तो उनके लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप लोग तो बहुत सुंदर उसका कर्मिंद्रियों का भी उपयोग कर रहे हैं, सोने का हाल बुद्धि का भी उपयोग आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया, और ये हीरे जड़ित बटलोई से सुंदर पूजा आदि करके इसका भी बहुत सुंदर उपयोग करते हैं। तो प्राप्त इमाम कर्म भूमिम न चरती मनोजो यतो ही मंद भाग्य, ये बोलते हैं मंद भाग्य व्यक्ति ऐसा है कि ये समझता नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर अपना वर्णन करते रहते हैं, और भी देखना जाए शरीर के लिए अपना पार करना, अपार संसार समुद्र विषय था हमारा, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ते, गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादंबुज दीर्घनों का। तो भगवान की लंबी चौड़ी जो दीर्घ नौका है, उस नौका में बैठने का अर्थ यह है कि जिधर भी हमारी वृत्ति जाए उधर उसी का दर्शन हो, ये उसका सामान्य रूपी भावार्थ यही होता है। तब हम मानते हैं कि वह हम लोग बैठे हैं। संसार के लिए कितना भी करे, संसार हमारे साथ कभी आने वाला नहीं है। बार बार यही बोलते हैं, जिसके लिए रात दिन भर लगे हुए हैं वो कभी हमारे साथ आने वाला नहीं है, और हमारा साथ जो देने वाला है उसको हम अपनाते नहीं है। यही संत लोग बोलते रहते हैं, अपनाने हम लोग अपनाते हैं, तभी भी एक उपदेश कैसा होता है, मेघ दृष्टि ने करावा उपदेश। जो संत महापुरुष लोग उपदेश करते हैं तो कैसे करते हैं? मेघ के समान करते। तो मेघ के समान का अर्थ क्या है? मेघ ये नहीं देखता है, बादल ये नहीं देखते हैं कि ये मैं समुद्र में गिर रहा हूं, या जंगल में गिर रहा हूं, या बंजर भूमि में गिर रहा हूं, या उपजाऊ भूमि में गिर रहा हूं, ये बादल कभी विचार करता है क्या? समान सर्वत्र वो बारिश करना उसका काम है। इसी प्रकार संत महापुरुष उपदेश देते समय सर्व सामान्य देते हैं, उसमें बहुत बड़े सिद्ध भी बैठ सकते हैं, कोई सामान्य लोग भी बैठ सकते हैं, जो अज्ञानी भी बैठे रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, लेकिन उपदेश कैसा होता है? एक शरीर का। यह नहीं बोल सकते ये तो हमारे लिए काम में नहीं है, बड़े बड़े भी बैठे रहते हैं, लेकिन ये उपदेश संतों की वाणी सब सबके लिए होती है, और जिसके लिए जो उपयोग है वो ले सकता है, और जो जिसने समझी गया पहले उसको और भी आनंद है, जो नहीं समझता है उसके लिए समझने के लिए है, जो समझता है उसके लिए तो उसका अभ्यास है, जो समझता है उसके लिए क्या है, दोबारा जाकर चिंतन करने की जरूरत नहीं, उसको तो बैठे बैठे अभ्यास हो गया, मैंने रिपीटेशन हो गया। और जिसको समझ में नहीं आता है उसको समझने के लायक उपदेश होता है, इसलिए संत महापुरुष हमेशा बोलते हैं ये संसार की कागज की पुड़िया है, आग लगे तो जल जाना है, ये झाड़ और झाकड़ क्या करना है, उलझ उलझ कर मर जाना है। मैंने सुंदर ऐसे उपदेश है, तो जो अज्ञान है वो तो समझ में आ रहे हो, सही बोल रहे हैं, लेकिन जो हर रोज ही समझ सुनता है उसके लिए तो ये कुछ लगता नहीं, उसके लिए आश्चर्य लगता नहीं है, लेकिन उसके मन में वो एक दृढ़ क्या हो जाता है, निश्चय होता है, संस्कार होता है। और निश्चय ये हर रोज हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद में इसके संस्कार बैठते हैं, और ये संस्कार ही हम लोगों को अंतिम समय में वासना का रूप लेते हैं। यम यमवापी स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तमय वैति कौंते सदा तद भाव भाविता। मैंने उस समय जो भावना हमारी आने वाली है उस भावना के लिए अभी से ही क्या करना पड़ता है, संस्कार बैठाने पड़ते हैं, और वे दृढ़ संस्कार बैठते हैं तो तुकाराम महाराज बोलते हैं निश्चयाचे बल तुकामने तेज फल, निश्चयाचे बल बोलते हैं निश्चय करो तो वो फल आपको मिले बिना रहता नहीं है। मेरी सेवा पूरी हो गई, मेरे वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।